नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। शिवसेना सांसद संजय राउत को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने बताया कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उनके वकील ने ईडी से किसी और दिन पेश होने का समय मांगा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि 15 से 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और मुंबई वापस आना चाहते हैं। इसके जवाब में शिंदे गुट ने कहा है कि बागी विधायकों के नाम बताएं, उन्हें वापस मुंबई भेज दिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने अपने विधायकों को मुंबई ना छोड़ने के लिए कहा है। संजय राउत ने कहा है कि इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी है। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत मिलने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना को अपने विधायक संभालने में और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। एक और विधायक राहुल पाटिल 2 दिनों से लापता हैं, पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। चर्चा है कि वो शिंदे गुट के पास गुवाहाटी पहुंच चुके हैं या फिर जल्दी पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राष्ट्रीय प्रगति में उनके समृद्ध योगदान के लिए भारत उनका आभारी है। राव का जन्म वर्ष 1921 में आज ही के दिन तेलंगाना के करीमनगर में हुआ था। मंगलवार को उनकी 101वीं जयंती है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय प्रगति में उनके समृद्ध योगदान के लिए भारत उनका आभारी रहेगा। उन्होंने एक महान विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में भी छाप छोड़ी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राव 171 से लेकर 173 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र की कांग्रेस सरकारों में वो विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। वो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 2004 में उनका दिल्ली में देहांत हो गया था। G7 समूह और भारत समेत 5 भागीदार देशों के नेताओं ने कहा है कि वो स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा करते हुए सार्वजनिक संवाद और ऑनलाइन व ऑफलाइन सूचना के मुक्त प्रवाह को लेकर प्रतिबद्ध हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान सोमवार को यहां जारी 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट शीर्षक से एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी नेताओं ने कहा कि वो इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए तैयार हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प लेते हैं। ये संयुक्त बयान इन आरोपों के बीच आया है कि भारत सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसकी वकालत करने वालों की आवाज़ दबा रही है। नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र, खुली सार्वजनिक बहस, स्वतंत्र व बहुलवादी मीडिया और ऑनलाइन व ऑफलाइन सूचनाओं के मुक्त प्रवाह को सक्षम बनाते हैं। साथ ही इससे नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए वैधता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही को समान रूप से बढ़ावा मिलता है। मुंबई में सोमवार देर रात 4 मंजिला आवासीय इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुर्ला की नाइक नगर सोसाइटी में स्थित आवासीय इमारत का एक विंग सोमवार देर रात ढह गया। उसके नज़दीक स्थित दूसरे विंग के गिरने की आशंका भी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि घायलों को घाटकोपर तथा सायन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने बताया कि 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 9 अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई। चहल ने बताया कि दमकल विभाग के अनुसार इमारत के मलबे में 7-8 लोग ही फंसे हुए थे, जबकि पुलिस को संदेह है कि मलबे के नीचे और लोग हो सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि दमकल कर्मी मलबे में फंसे अन्य लोगों की तलाश के लिए बचाव एवं तलाश अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उन्हें मलबे में 20 से 22 लोगों के फंसे होने की जानकारी दी। जीएसटी परिषद की चंडीगढ़ में मंगलवार को शुरू हुई बैठक में कुछ वस्तुओं की कर दरों में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था और छोटे ई कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियमों में राहत जैसे मुद्दों पर भी बैठक के दौरान चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 29 जून तक चलेगी। परिषद की बैठक 6 महीने बाद हो रही है। पीआईपी चंडीगढ़ ने ट्वीट किया, बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हाल ही में हुए उपचुनाव में नव निर्वाचित सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मंगलवार को यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनके प्रति आभार जताया। सांसद भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता एवं गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें भगवा अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया तथा श्रीराम की प्रतिमा भेंट की। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।